ಕಲ್ಪಕರುಗಾಸಿಂಧುಭ್ಯ ಪತಿತಾನಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ಮಹಾಪತನ್ನಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಮ್ಮೇ ಗೌರವಿದೆ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನಾಂಭೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೀಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮಸ್ತುತೆ ಸಪ್ತಕಾಂತಂ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವಿಶಭಾನುಸುತೆ ಆದೇವಿಕಾ ತೂ ಭರತದೃದಯಾಗ್ರವಾಚ ಜಾತೇ ನಿಕಷ್ಟಭೂಮಿ ದಂಡವ ಸಮುದವ ಚಾರತಿ ಆಚಾಪ್ರಭಾಬಲವು ದಶ ಜನಪ್ರಿಕೇತೇಂದ್ರಶ್ಯಾಮಿಷ್ಟಿರವಿತೋ ಮುಂದೇ ಕುಂಜೀವನ ಜಗಂಜಾಗುದರೋದು ಸಮಿತಿ ಬದ ಸಮಪಟ್ಟಿಯ ವೃಂದಾವನ್ನಾಮೋದರ ರಾಧಾಂದಲ್ಭುಜನ್ ಭೂತಲೆ ನಂದರೂಪ
जो कुछ शक्ति का विकास और जो कुछ हम जगत में शिव जगत में जीव जगत में जो कुछ देख रहे हैं सब राधा जी की शक्ति से प्रकाश से ये सब कुछ हुआ कृष्ण का दर्शन हमें कृष्ण का ये जगत हम जो देख रहे हैं सब कुछ जो देख रहे हैं इसमें कृष्ण का कोई परिचय है का कोई परिचय है कि नहीं जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं इसमें कृष्ण का क्या परिचय है जैसे इस मठ में हमारा कोई परिचय है हमें कैसे किस चीज से हमको पता लगे ये महाराज जी या महाराज जी का कोई स्मृति है हमारा कोई स्मृति है इसमें और क्या जैसे ये मठ जो को देखेगा जी भाई इसमें ये सब करवाए वो क्या करें तो हमारे गुरु जी ने ही सब कराए इसके बाद में हमने इसमें कराया महाराज जी ने सब कुछ करवाया उन्होंने ऐसा करा। प्रतिदिन यहाँ पर पाठ करते थे, मान के हम नहीं जाएंगे तो लोग आएंगे तो देखेंगे तो लोगों को कुछ ये होगी ना स्मृति होगी, महाराज जी किसी समय में पाठ करते थे और ये सब बनाया, लोग उनके आकर्षण से आते थे। ये सब है। अच्छा, हमारे गुरु जी की स्मृति क्या है? हमारे गुरु जी का वर्णन था भजन की कुटी थी, उसको तोड़वाया गया और उसने वहाँ पर गुरु जी का चित्रगत करके उसके हम लोग किया। ये गुरु जी के द्वारा ही श्री केशव जी गौरी मत स्थापित थे। उनका नाम भी क्या था? केशव गोस्वामी। और उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने नाम पर नहीं, यहाँ के आदि केशव जी विग्रह हैं, ये मथुरा के वही विग्रह हैं, वही मालिक हैं, प्रभु हैं, ये आदि केशव यहाँ के मालिक हैं, इसलिए केशव जी गौरी। जैसे नौतम गौरी मत गुरु सनातन गौरी मत वृंदावन, ये सब कुल महापुरुषों के नाम पर ऐसे ही, ये सब कुल के परिचय है। तो ये जगत में कृष्ण का क्या परिचय है? कुछ
लीला की वृंदावन अन्नराम मस्ताना।
लीला तो कौन कराया?
राधा रानी के साथ।
राधा रानी भी शक्ति का ये परिचय है। लीला स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है?
लीला
उनका परिचय क्या
शक्ति के अलावा सबसे ज्यादा ही नहीं है तो कैसे
ये जगत किस को किसने बनाया? शक्ति। कौन शक्ति? जड़ शक्ति। और इसके अंदर में जो जीवात्मा है उसको कौन बनाया? शक्ति। जीव शक्ति। अच्छा, किस जगत में जो कुछ है, जो प्रकाशित है, कुछ प्रकार शरीर है और उनकी पंक्ति है, उनके परिकर है, वहाँ की लीला भूमि है, वैकुंठ है, वृंदावन है, इसको किसने प्रकाश किया? शक्ति। जो कुछ वो सब शक्ति का ही प्रकाश है। तो कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण का कोई परिचय है कि बैठ करके केवल लड्डू लड्डू खाते हैं? क्या उनका परिचय है? मतलब ये देवी धर्म जो नहीं पड़ेगा नहीं करता।
सबकी माना सब इच्छा करें सबकी काज
करें। कृष्ण की जगत इच्छा है, जगत को प्रकाश किया किसने? सराधा जी स्वयं नहीं करते, उनको क्या जरूरत? भूभंगी से उन्होंने इच्छा की ये शक्ति ये करो, प्रसाद से भी ये करो, माया शक्ति ये करो। दुर्गा जी को आदेश दिया जब उनकी दुर्ग बना करके और जीवों को उसमें डाल कर सकते जो भगवान का भजन नहीं कर, ये पीछने का काम कौन करता है?
माया।
उसी का नाम दुर्गा। राधा जी कुछ नहीं करते, वो बस इच्छा किया कृष्ण ने। और राधा जी भी वैसे ही जहाँ उन्होंने इच्छा की ब्लैक दिस बॉन्ड भी जगत को बैठी जो भी ऐसा लिखा ये ऐसा हो ये सब राधा जी शक्ति का ये जो कुछ भी प्रकाश है जो कुछ हम देखते हैं वो सब शक्ति का ही शक्ति की क्रिया है शक्ति का। कृष्ण का परिचय क्या है? जो सुधा मैया हमें बांधना चाहती है न बांधनी तो अच्छा है, बस इतना ही उनके अंदर में आया। हमारी लीलाएं कहते हैं और उनकी लीला शक्ति छटा करके और ऐसा कर दिया। कृष्ण लंबे चौड़े भी नहीं हो रहे हैं और उधर रस्सी बढ़ती जा रही है, ठेका लगाने की कोशिश की जा रही है और वो एक बार भी ठेका पूरा नहीं होता। ये कौन कर रहा
लीला?
तो ये लीला कैसे हो रही है?
इच्छा से
किंतु लीला शक्ति कर रही है, इच्छा उन्होंने की और लीला शक्ति घट आ करके और ये सब करने लगी। इसे जो कुछ है जगत विश्व ब्रह्मांड का चेतन जगत का जीव जगत का जो कुछ है जो कुछ क्रियाएं हम देखते हैं जो कुछ रूप हम देखते हैं उसका रूपांतर देखते हैं सब राधा जी का ही इच्छा से सब कुछ चलता है। बस कृष्ण की इच्छा हुई है कि ऐसा हो। बस राधा जी ने रास की सामग्री जुटा दी, उन्होंने कहा जो रास हो तो कृष्ण ने कुछ किया नहीं, उनकी जो शक्ति है अंतरंगा शक्ति अंतर में रहती है ना वो समझ गई, अब अपने आप बन गई राधा, अपने आप बन गई ललिता शाखा की प्राप्त शक्तियां, अपने आप बन गई लक्ष करोड़ शक्तियां, वृंदावन को एकदम सजा दिया फूल फल फल ये जितने वृंदा देवी को आदेश दिया वृंदावन को अच्छी तरह से सजा दो, ये कौन वृंदा देवी भूटानी संत है वृंदावन इस तरह से। इसके बाद में हाव भाव कटाक्ष इत्यादि जो है ना, हाव भाव हेला इत्यादि, ये सब कौन कर रहा है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। ये तरह तरह के जितनी भी गोपियां हैं वो सब गोपियां हैं, वो राधा जी के एक एक भाव है, एक एक भाव को इसलिए ये सब राधा जी का ये परिचय है। किंतु कृष्ण का बल उन्होंने इच्छा की बस हुई, किंतु वो इच्छा दिखती नहीं है, जो कुछ दिखता है वो शक्ति का ये विकार, शक्ति का प्रकाश, शक्ति की इच्छा से, शक्ति की क्रिया के रूप में सब कुछ दिखता है। तो ये श्रीमती राधिका जी अनादि सभी की आदि सब प्रकाशिका अंतरंगा अथवा लादनी अथवा स्वरूप शक्ति है, किसी से भी सब कुछ जितनी भी शक्तियां मिलती है। तो राधा जी की सेवा होने से, प्रतिज्ञा होने से सबकी, और राधा जी को छोड़कर के और जो करेंगे ना तो नहीं होगा। एक छोटा सा शिशु है, एक परिवार एक किलो पेड़ा दिया और उस बच्चे को दे दिया ले लो, क्योंकि घर का ही परिवार तो है ना, परिवार का ही अंग है, और बच्चे को दे दिया और बच्चे से कोई चाहेगा कि इतना भी निकाल लें तो क्या करेगा, ले करके चुपचाप बैठ जाएगा, कोई नहीं मांगे, माता पिता मांगेंगे, जो दिया है वो भी मांगेंगे। अभी बंसल जी मिठाई लेकर के आए और अपने नातियों को दे दिए और फिर उनसे मांगे तो कभी नहीं देंगे, कभी दे ही नहीं सकते, बस ऊ करेंगे इधर चुराएंगे उधर करेंगे। और वही चीज यदि घर की माता को मिल जाए तो माता जी क्या करेंगे और बच्चा क्या करेगा, उसमें लेकर के मुख में तक खाना देगा, बस खाने लग जाए, मैया के हाथ में पड़ गया मैया खाएंगे नहीं, क्या करेंगे, सबको पहले बांट देंगे। यदि बच रहा तो ठीक है, और नहीं बच रहा, यदि घर में कोई नहीं है तो क्या करेंगे, उसके लिए भी रख देंगे, यही और उसको नहीं है बस उसके लिए रख देंगे। इसके बाद में जब वो भी आ जाएंगे उनको देख करके जो बच रहेगा तो उसको अपने रूप में दिया, नहीं तो यदि नहीं बचा तो अपने। उसी तरह से जो कोई भी उपासना हो, यदि श्रीमती राधिका के प्रति वो उपासना हुई तो वो समझो कि सबको मिल गई, जीव मात्र को प्राणी मात्र को वो सेवा मिल जाएगी, वो चीज मिल जाएगी। और राधिका कहीं देकर के दुर्गा जी को यदि केवल मिला तो क्या हुआ, दुर्गा जी क्या करेंगी, और जितनी जिसको भी देंगे अपने अपने भाषा को ले लेगा, पूरा ही ले लेगा, तो राधा जी तक नहीं पहुंचे, राधा जी को जरूरत भी नहीं है, क्यों, वो तो आपका काम है, उनको जरूरत है, कोई दुर्गा जी को बलि दे रहा है, राधा जी को जरूरत है, तो क्या ये वो दुर्गा जी को कभी ले भी सकती है, बलि माने क्या, ये गर्दन नहीं, आजकल भेड़ बकरे कबूतर सब ये सब उतर ये सब नहीं, बलि माने उपहार, कभी भी दुर्गा जी कोई उपहार नहीं ऐसा लेती है, रक्तमान उसका तो बड़ी साक्षी है, किंतु आजकल सब जगह राजस्थान में घर घर तक बड़े गंदे की है। उल्टा कहें कि महाराज जी आपने कहा जाए राधा जी की पूजा करना है, गणेश चतुर्थी के दिन हम क्या करें, तो करवा चौथ के लिए हम क्या करें,
शकट
और ये
शकट
अभी अभी रामनवमी और नवरात्र को क्या करें, ये हमारे तुलसी प्रथा है नवरात्रि में करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, अब इतना कर भी नहीं कर समझे तो करो के विचार, हम लोग तो बस इंगित देंगे बस इतना ही क्या भी। एक आदमी ने कहा महाराज जी हमारे एक लड़का ये सब समझने और सोचने की बात है, एक लड़का हुआ तो उसमें लोग कहते हैं कि वो हो गया उसमें कुछ नहीं करना चाहिए, ठाकुर जी हमारे घर में है बाल गोपाल जी है तो उनकी पूजा आप कैसे हो, तो हमने सोचा जैसे कहिए किसी हृदय से पूछ रहे हैं सामने कर दिए, भाई तुम्हारा अपने लड़के के लिए क्या करें, तुम्हारा उसे भी बड़ा लड़का है
বলছে সোবর বলে
সোহর
সোবর সোবর
সোবর মানে কাজে আপনার জিস মহিলা কো লড়কা হুয়া হ্যাঁ জিস বহু কো লড়কা হুয়া হ্যাঁ উসে বড়া বালা লড়কা কো বসতা হ্যাঁ তো উস লড়কে কো ক্যা হোগা ও ঘর পে তুমি বাঁধ দেয়েঙ্গে না উসকো খিলায়েঙ্গে আর যদি ও মহিয়া কে পাশ মে জানা চাহতা হ্যাঁ জিসকো ভি বচ্চা হুয়া হ্যাঁ তো মহিয়া কে পাশ মে জায়েগা কি নেই হ্যাঁ আপনি সরক দেন যে নেই সরো গিয়া না ক্যা হোগে ও তো জায়গা বেঠে গোদ মে মহিয়া কে গোদ দে বিনা মায়ের ও সরো দিন রাত তো তার হেগা তো উস লড়কা পবিত্র হো গয়া কি নেই উসকো তো ক্যা করিয়েগা वो जो ठाकुर जी गरीब है तो उससे कम प्यारे हैं तो वो क्या पवित्र हो जाएंगे ठाकुर जी किसी स्थिति में भी अपवित्र होते हैं ना वो जिनका नाम लेने से विश्व ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है पवित्र हो जाएंगे तो नहीं ठाकुर जी तो पवित्र हो गए इसलिए उसको ब्राह्मण के घर में या दूसरी जगह पर जाना चाहिए उसकी पूजा नहीं करना चाहिए सामने ताकि ऐसा और लोगों ने तुम तो वैष्णव में ऐसा अब हमारे यहाँ कोई माल नहीं जैसे हटा कोई वैष्णव चले जाए और प्रकट हो जाए तो क्या करेंगे हम तो उस दिन की आरती भी करेंगे यदि वो घर में जिस समय यहाँ पर हैं अभी नहीं उनको संस्कार किया जा सकता है अग्नि का तो हम ठाकुर का भोग रात का समय हो गया दो पड़ गया हम क्या करेंगे
भोग रात
सब कुछ उनका विवाह हम चलाएंगे भाई उन्हीं की कृपा से ये सब पवित्र होगा ठाकुर जी पवित्र तो हम तो अपना सब काम देखो हमारे गुरु जी अप्रकट हो गए इधर में आरती हो रही है उनकी माला निकल रही है उस माला को लेकर गुरु जी के और कीर्तन सुन रहा है कोई रो रो करके सभी कीर्तन कर रहे हैं इसके बाद में विधवत कर दिया जैसे हम लोग इधर उनके काम में लगे हैं तो लोग ठाकुर जी की सेवा का कहीं भी इधर उधर कहीं ना हो सब काम ठीक विधवत करना चाहिए गुरु जी तो अपने नित्य लीला में प्रवेश करके इन्हीं के पास तो जा रहे हैं और जाएंगे कहां अतः इसमें कोई चीज केवल ऊपर की किसी शर्म से दिखाई नहीं पड़ रही और हमारा शरीर जैसा पवित्र है वैसा शरीर इन लोगों का नहीं है वो नित्य लीला में अम्मा ने कि उनको तो कहा उन्होंने जाकर क्या ऐसा ही किया ठाकुर जी जैसे बात हो गए वैसे ही कर रहे थे इस समय में जमुना जी गए दूसरे दिन जो लड़का नाती हुआ है उधर पैर फिसल गया जरा पैर टूट गया जो बड़ी गलती महाराज जी ने उसका समझा दिया हमने समझ लिया और गया और पैर रपट से गेट गिर गया और उसी के वजह से आ गया बस दूसरे दिन उन्होंने कहा नहीं पक ठाकुर जी को गया दूसरी जगह ठाकुर जी को दूसरी जगह दे दिया वहां पर सेवा पूजा हमने दी और अब ठीक तो इसलिए परम लोगों को तो बुद्धि में भेद नहीं उत्पन्न करना चाहिए क्योंकि उनकी ऐसी निष्ठा नहीं है तो राधा जी की पूजा करने से उपासना करने से कैसी छोटी देवता या जो कुछ भी है विश्व ब्रह्मांड में सबका हो जाएगा और अलग अलग करने से वो वहां तक नहीं पहुंचेगा जहां तक जाएगा वहीं तक रह जाएगा वैसे इन पूजाओं का जो फल है ये कौन देने वाला है वो राधा जी ही देने वाली है तो कहीं देते हैं राधा जी क्या शक्ति के माध्यम जितने भी देवताओं की पूजा है जो कुछ भी है सबका फल कौन देगा वो गीता में बतला है ना देवान ज्ञान की देव प्रथा भूतान ज्ञान की भूत दिया मज्जा जी अपनी माँ और अपित क्या है जो भूतों की पूजा करते हैं वो पूजा मुझे ही मिलती है और मैं उसका फल देने वाला हूँ
अभी भी
ये तो है अब जपान देवता जजंते श्रद्धांजते जजंती अभी जितने भी जगत में पूजाएं होती हैं वो सब पूजाएं जितनी पूजाएं हैं सब पूजा किसकी होती है मेरे लिए मैं ही उसको लेता हूँ किंतु फिर उन देवताओं को बांट देता हूँ क्योंकि उनके उद्देश्य से किया गया है मैं तो वो ये कार्यक्रम चलता नहीं मैं वहां तक मैं पहुंचा देता हूँ और तो देवता की पूजा वाले करने वाले देवता तक भूतों की पूजा करने वाले भूतों तक प्राणियों तक और मेरी पूजा करने वाले हमारे तक और हमारा पा करके जन्म दीजिए वो सबसे जन्म देंगे किंतु और सब देवताओं में ऐसी बात नहीं है तो समस्त जितने भी जो कुछ है सबकी आदि स्वयं अनादि मूल मूल शक्ति आधार शक्ति स्वरूप शक्ति ये श्रीमती राधिका है, ये राधा राधिका और सचिदानंदमय कृष्ण का प्रेम ही उनका शरीर है। कृष्ण का राधा जी के प्रति जो स्नेह है उसने से वो प्रथम उम्र में स्नान करते हैं, मतलब कामना उठा है प्रथम स्नान, पहला उठना कमना करुणा मतलब क्या है राधा जी बड़ी कृपा करुणा की धन होती है। एक बछड़ा छोटा था कुछ दिन का भी सुधुकता हुआ बड़ा खबर एकदम सफेद उछलता कुदता हुआ और यहाँ पर की अंकुरें निकल रही है जो बाकी था एक दिन चला तो सामने उसके पास बाकी के पास और बता नहीं पड़ रहा नहीं खोपले जोदा घास निकली है पीली पीली होती है ना उसकी जब अंकुर होता है तो उसने मुख लगा दिया सुनने लगे तो वो जल्दी से ऐसे उछलते हैं ना ऐसे सुन करके उठते वैसे सुनने गया तो उसको लग गया तो लग गया तो वो कोमल उसका मुंह बस उसने रक्त जैसा कुछ निकलने लगे फट गया दादा जी देख रहे हैं अब उसका मन खराब हो गया बछड़े का झट दौड़ करके गई और बच्चे को अपने गोदी में बैठा दिया और उसकी मरहम करते करते उसमें जो कुछ लगाना था वो मलबी किया लगा सकते सुंदर करने लगे उसको स्नेह करने लगे एक पशु तो पशु ऐसी जब उनसे दया तो और उनका कैसी दया बड़ी दया यदि और उनकी दया की बहुत महिमा है अपार है उसका वर्णन करना वो संभव कर साधारण लोगों को यदि कोई कृष्ण को चाहता है तो राधा जी उसे कृष्ण की दासी बना देते राधा जी की समस्त कृपा ललिता जी ने ली अपनी कृपा कृष्ण की कृपा गुरुदेव जैसे होते हैं और राधा जी की कृपा सब कुछ है ललिता जी की कृपा जो यदि कोई को चाहता है कि मैं राधा जी की दासी बन जाए तो तप्त पदने अनुरुद्धनान सदस्त दिक्त घटनेन कृतार्थयन्ति देवेन गुणैः लभितां लभितां यदि उनको पता चल जाए ये व्यक्ति ये भजन करने वाला व्यक्ति राधा जी की चरणों की दासी होना चाहता है तो उसका पिता करके झट कुछ हुआ चाहता ऐसी वो दया तो ये करुणामृत करुणा का अमृत से पहला स्नान ये वयसंधि इत्यादि का वर्णन कर रहे हैं बाल चपन शादी हो गई अब कुछ उसमें लज्जा का भाव आने लग गया किशोरी का पहले भाव आने के पहले तब फिर दूसरा स्नान तारुण्यामृत पहला होता है नदी में स्नान सवेरे कोई काम नहीं है जाकर के अपना तब लिखित तो करके स्नान किया तो वो अमृत क्या कृष्ण का स्नेह राधा जी उसमें तो दुष्टी लगा दी खारा में स्नान दो पासों घर के काम में कुछ अस्त व्यस्त और आदमियों का आना जाना लग गया था चारों तरफ से आगे था इसलिए लज्जा कुछ लगती है जाने इसलिए सखियां जल भर के कलश में ले आई जमुना जी का पानी और उससे स्नान वो क्या तो सखियां किसी महीने के कृष्ण को दर्शन कराती हैं उनकी गाथाएं सुनाती हैं आज आज ये सब लीलाएं हुई कृष्ण गोचारण के लिए ऐसे गए ऐसे उन्होंने बंसी बाजी जैसे रूप का वर्णन कर रही है तो विष्णु अध्ययन भागवत बंसी गोपियां पर गोपी गीत में ृदया सूर्यन गोपुंड दंडारण्यम प्राप्त एक गोपी गोपी से जाने वो कृष्ण का कितना सुंदर मधुर रूप है। पर आशीलम नटवर मधु करणयो कविता सिद्धत बात ये बात कहते हैं। अच्छा सर इतने सुंदर किले हैं, इतने सुंदर किले हैं जिसका कहा नहीं पीताम्बर है। ऊपर से स्कूल विद्युत की भांति चमक रहा है जैसे मेघ पर श्यामल मेघ पर स्थिर विद्युत हो। बिजली कैसे कौन सी है मिनट मिनट में एक मिनट में चलती उधर और चली गई कहां ऐसे वो तो बिजली है स्थिर बिजली नहीं है और फिर लुप्त हो जाती है। किंतु श्याम रूपी मेघ पर अर्थात उनके अंगों पर वो स्फूर्त विद्युत के समान उनका पितंबर लगता है, हवा में उड़ रहा है। अक्सर गया त्रिभंगी ललित से खड़े हुए हैं वैजयंती माला सात रंगों की पुष्पों की माला सुगंधित कैसी शिवप्रबंध नहीं उसमें धीमी धीमी सुंदर सुगंध लिखी सुगंध सड़क है कुंद मंदा भारतीय जो फूल होता है उसमें मधुर मधुर सुगंध होती है। शिव प्रेमी विशेष तौर से वृंदावन में ऐसे फल होता है। पश्चिम में जो फूल होते हैं लीली लीली फूल होता है अभी अभी भी शुभ अभी निकला अमूल है। भारतीय जो फूल होते हैं कुंड मंदारी चारी साझी में ही जाएंगे ऐसे ये सब फूल मधुर सुगंध उसमें होता है। और उसमें मंगल आएंगे गुलाब पर बैठते हैं कि नहीं मैं नहीं जानता किंतु कुंड मंदारी ये जो फूल है उन पर रोज पर बैठते हैं। ये तारुण्यामृत तारुण्य माने क्या पहला स्नान हुआ कारुण्यामृत और दूसरा हुआ तारुण्यामृत। तारुण्यामृत माने तरुणा तरुणता अभी तारुण्य माने होता है जौवन किंतु जौवन नहीं अभी अभी जौवन के देहली पर प्रवेश कर रही है श्रीमती राधिकाई इसको किशोरी भाव कहा जाता है। कृष्ण किशोर है युवावस्था में नहीं युवावस्था वो द्वारका और मथुरा कंस को जब पछाड़ा वो अभी किशोर अवस्था क्या भाई जौवन में प्रवेश कर रहे हैं किंतु जब तक वृंदावन में है तब तक उनकी किशोर अवस्था है। जब तक वहां से गोकुल में तब तक बाल्य अवस्था वृंदावन में जब पधारे तब किशोर की देहरी पर चढ़ने लगे वो पहला हुआ बाल्य इसके बाद में पौगंड। पौगंड मैंने अभी बच्चे हैं किंतु पौगंड का जो अंतिम समय है पांच से लेकर के आठ नौ तक नौ सौ के बाद सितंबर ये पौगंड का नाम है तो कृष्ण का छ में ही हो जाता है और उस समय में किशोर में पैर देने लगते हैं उसमें कृष्ण की चपलता भी कुछ कम हो जाती है उन्हें भी करुणा ऐसे ही सब गुण आ जाते हैं जैसे श्रीमती राधिका जी ने और वो जबकि किशोर से अवस्था से जबकि युवावस्था में प्रवेश करने लगते हैं उस समय का जो रूप होता है कृष्ण का वह कई सौरभम भेयम आद्य एव परोरथ कृष्ण के और रूप तो सब समय ठीक ही है बाल्यकाल भी अद्भुत है और द्वारका और मथुरा में भी उनका रूप अद्भुत है किंतु ब्रज में जो किशोर का रूप कृष्ण का है और श्रीमती राधिका जी का किशोरी का जो रूप है यही समस्त रूपों का और राजा पर्वत आद्य मैंने सिंगारसी आद्य क्या पूरी मथुरी मथुरी पूरा
श्याम एवं परम रूपम
श्याम एवं परम रूपम पूरी मथुरा पूरी बना श्याम ही रूप परम रूप यहाँ श्याम रूप मैंने कृष्ण का रूप किंतु वहां पर रूप को ऐसा कर्म से गबन गया राधा जी का रह गया तो इसलिए श्याम और परम रूपम मैंने श्याम मैंने श्रृंगार रख वही परम रूप है राधा और कृष्ण का किशोर जो भी चाहिए सब कुछ सुंदर इस तारुण्य में असत किशोर का भाव जब उसमें आता है पहले चरण में प्रवेश करते हैं उस समय में उसने स्नान किया ये मथन उनका स्नान लावण्यामृत धारा है तदुपरि स्नान अब इसके बाद में श्री श्याम का जो स्नान है एक बार दोपहर का लावण्य, ये किशोर की पूरी अवस्था, और उसके बाद में लावण में उसने स्नान किया। लावण्य किसको कहते हैं? मोती देखा है, मोती कैसी होती है? लाल लाल सफेद होती है मोती, किंतु उसमें ग्लेज निकलता है, चमक भीतर से, उसके स्वरूप में ही वो है, ऊपर से पॉलिश करने से नहीं, भीतर से उसमें ग्लेज निकलता है, चमक। इसको कहते हैं लावण्य। कोई भले ही काला हो उसे कोई मतलब नहीं, किंतु यदि लावण्य उसमें अंदर से चमक है भीतर से, तो उसमें सौंदर्य निखरता है। और एक आदमी गोरा है, सूखा बाकी थी जी के समय, मुख सूखे हुए है, होठ सूखे हुए, कोई उसमें सौंदर्य गोरा होने से नहीं हो जाएगा, उसका भीतर से लावण्य होना चाहिए। ये सबको हो जाएगा? यह राधा कृष्ण में, राधा जी ने ये लावण्य से स्नान करते हैं, लावण्य अमृत धारा। तो ये शाम को होता है, जैसे लावण्य का जो अमृत बना है, जैसे शाम को संध्या में आदमी साप के समय में, जबकि खूब गर्मी रहती है, यदि पास में कोई नदी हो, सुंदर निर्भर हो, उसमें जरा दिन भर गर्मी रही, पसीना छूट रहा है, गर्मी चारों तरफ, अभी भी गर्मी कुछ कुछ है, तो उन्हें शाम को जब कुछ ठंडा होने का मौसम आया, तो क्या करता है? लोग चले जाते हैं नदी के किनारे, यमुना के किनारे, और डुबकी लगा करके पानी स्वच्छ निर्मल सुगंधित हो उसमें स्नान करते हैं। तो उसे क्या होता है डूब करके स्नान करने में? रहता है वो सरस हो जाता है, साफ दूर हो जाता है, और शरीर में अपने आप कांति आ जाती है। तो लावण्य मृत कृष्ण का ही रूप गुण लीला इत्यादि का चिंतन करने से ये लावण्य आता है। लावण्यता धरा पदों पर स्नान, मोती में जैसे प्रकार से कांति की तरंग प्रतीत होती है, उसी प्रकार से श्रीमती राधिका जी के अंगों में किशोर की देहरी पर जब चढ़ने लगती है, तो ऐसा लावण्य। ये किस लिए कह रहे हैं? ये राधा जी का ध्यान, नेताजी की क्या कल्पना होगी? वो कल्पना कल्पना वहां नहीं चल सकती है। कितना सुंदर रूप से इसका वर्णन कर रहे हैं चैतन्य के सामर्थ्य में, कौन कर रहे हैं? परम मुक्त पुरुष, जो कि राधा जी का दर्शन भी नहीं किया। कैसे दर्शन किया? नित्यानंद कुल जी की रूप सनातन की कृपा मिली, और उनकी कृपा से उनके दर्शन किए, तब ये वर्णन कर रहे हैं। तदुपरी मैंने ऊपरी मैंने दोपहर के पश्चात कहा है, अर्थात जब किशोर की मध्यम स्थिति आई उसके बाद। इसको त्रिकालिक संध्या स्नान कहिए। तो पहला हुआ करुणा, करुणामृत में स्नान किया, दूसरा किया नवयौवन रूपी किशोर रूपी, और तीसरा लावण्य, तीनों का मिश्रण श्रीमती राधिका जी के रूप में है। फिर कहते हैं निज लज्जा श्याम परिपाटी पत्र साठी परिधान कृष्ण अनुराग जीते अरुण बसन प्रणयमान कंसी निकाय दक्षाच्छाद। राधा जी कहते हैं जिसे राधा जी क्या पहनती हैं? श्याम साठी, नीचे ने श्याम वर्ण, साथी साथी माने उसको क्या कहते हैं?
लहंगा,
लहंगा। वो समय साड़ी उनका रिवाज है, वो साड़ी भी उसी को लहंगा। सुंदर लहंगे का रंग क्या? लहंगे का रंग वहां पकड़ते हैं श्याम, और ऊपर से जो गुलाबी रंग का ओढ़नी रंग का। और कभी कभी का वर्णन ऐसा भी आता है, जो नीचे का लहंगा है वो लाल रंग का, और ऊपर से कहता है नील का, नीला। तो यहाँ पर श्याम साकी, अर्थात तो श्याम रंग किसको कहते हैं? कृष्ण का रंग श्याम है, कृष्ण के अंगों का जैसा रंग है उसी को मैं धारण करती हूँ। इसलिए उसको धारण करते हैं। और ये है निज लज्जा। अब उन्हें लज्जा का भान आया किस रूप में, इसको उन्होंने धारण कर रखा है। और उधर श्याम रंग कहते हैं श्रृंगार रंग, अर्थात उसको उन्होंने धारण किया है। राधा जी परम लज्जावती है, लज्जा ही स्त्रियों का भूषण है या सब लोगों का भूषण है। रामचंद्र जी के सामने थोड़ा सा उनका गुणगान कर दिया गया तो राम क्या करेंगे, और हम लोग क्या करें, सत्संग जाए राम जैसा अपना गुण बखान करने लगेंगे। कौन आदमी मरता है जो बार बार अपना गुणगान करता है अपने मुख से, वो मरता है जब यार मे लिया वो मरता है। अब दूसरे का हनुमान जी का गुण सुनते हैं, शरद जी का सुनते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, आपको मुस्कुराने लगते हैं। और जहां अपना गुणगान सुनाता बस लज्जित हो जाएगा। ये समस्त लोगों का ये भूषण होना चाहिए, लज्जा होना चाहिए। किससे? दुर्गुण से लज्जा होनी चाहिए। उसमें तो खुद जोर से बोलने में, अपना अभिमान व्यक्त करने में, गंदा चीज खाने में, गंदा चीज व्यवहार करने में, इसमें लज्जा आनी चाहिए, इसको दूर होनी चाहिए। अब विशेष करके स्त्रियों के लिए भूषण, आजकल तो देखते हैं कि स्त्रियां पुरुषों के कान काट देंगी, बहुत क्या रास्ते चल रहे हैं, धक्का देकर के बैठ जाएंगे। यदि प्रवेश किया ना तो पुरुषों को धक्का दे, साधु संत आए तो बस एकदम धक्का ही दे देंगे, तो वो बैठ नहीं सकते कोई सीमित कर सकते। एक बार किसी पुरुष को कह दिया किसी महिला ने, हम जूता मारेंगे मुख पर तुम्हारे। भैया तुम लोग सीखना, तुम लोगों ने लज्जा क्यों लाए, अच्छे अच्छे गुण जितने हैं ये सब बतला रहे हैं, इसको अपने जीवन में लेना चाहिए। तब तो ये सब जितने सदगुण है वह हमारे दूषण है। राधा जी के एक बतला रहे हैं ना, राधा जी का पहला स्नान किसने किया, कृष्ण का जो राधा जी के प्रति प्रीति है उसको दिया। उसी तरह से सभी कुछ और भी आगे बतलाएंगे। लज्जा जो अपने कार्यों का स्तव नहीं करते और अपने स्तव गुण गुणगान को सुन करके बस बड़े लज्जित हो जाते। धृष्टता का विरोधी, धृष्टता नहीं होना चाहिए, धृष्टता का विरोधी लज्जा है। अनेक होते हैं धृष्ट, धृष्ट माने क्या, अक्खर, अक्खर जिसको कहते हैं अक्खर, अक्खर नहीं होना चाहिए। अपनी बात यदि कुछ ऐसी भी बात हो तो उसको बड़ी नम्रता के साथ में उसका प्रयोग होना चाहिए। कृष्ण अनुराग द्वितीय अनुभवशम प्रणयमान कंचिलिकाय वक्षाक्षरम। कृष्ण अनुराग, कृष्ण के प्रति उनका जो अनुराग है, कृष्ण का उनके प्रति जो अनुराग है राधा जी के प्रति, वो उस पानी में उन्होंने कारुण्यामृत में स्नान किया। और इधर कृष्ण के प्रति इनका जो अनुराग है, अनुराग को उन्होंने धारण कर रखा है, ये उनका अरुण दशन है। अनुराग कारण कैसा होता है, लाभ, और श्याम कारण वो श्याम है। तो कृष्ण का इनके प्रति जो अनुराग है वो तो है श्याम, और इनका कृष्ण के प्रति जो अनुराग है वह कैसा है, अरुण रंग है उसका, तो उसको वसन धारण ये ऊपर था। और कहीं कहीं पर है नीचे ही उन्होंने अरुण रंग रख रखे हैं और ऊपर से श्याम ओढ़नी है, ऐसा ही अधिक दिखता है। अनुराग किसको कहते हैं, कल बतलाया था हमने, जो प्रेम परिपक्व अवस्था में बढ़ते बढ़ते ऐसी स्थिति में आ जाए कि कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम होने पर कृष्ण को नए नए रूप में अनुभव करता है, नए नित्य नवीन रूप में उनके भाव नित्य नवीन रूप में बढ़ते चले जाते हैं, इसको कहते हैं अनुराग। कहते कैसे, जगत में भी इस अनुराग का कुछ विकृत प्रतिफलन है, कैसे विकृत प्रतिफलन है। एक था दक्षिण प्रदेश में पहलवान प्रखरी नमी पहलवान और गुंडा, पहलवान लोग प्राय गुंडे को, शरीर में ताकत होती है ना, तो जो नहीं करना चाहिए सबको आदेश है, बात की इधर गंगा प्रसाद करा देंगे, उनके पास में 10-5 चेहरे रहते हैं, वैसे ही चाहिए तो वैसा ही धर्मोद्धर उसका नाम था, धर्मोद्धर पहलवान था, जाति का कुछ शूद्र जैसा ही था, तो वो एक स्त्री के प्रति आसक्त था, स्त्री बड़ी सुंदरी थी, बड़ी सुंदरी से सुंदरी थी, अब उसके ऊपर में मोहित हो गया, तो स्त्री जो काफी वो करता उसकी इच्छा के बीच कभी नहीं चलता, किंतु और लोगों के लिए महान खेद मैंने पाप था, क्या कह दिया इसलिए आज कहा कि मैं आज अरविंद जी के दर्शन करने के लिए जाऊं, चलिए बस उनको छाता ले लिया और छाता में रख करके अपने आप पीछे चलने लगा और वो आगे से चल गई, आगे से चली और वो पीछे से चलता हुआ सस्ता हुआ चल गई, लोग ऐसा दिखाया जगत में फायदा नहीं होगा, वो चल रहा है ना तेरी पीछे पीछे चल रहा है, इसलिए उसके मुख को ही देख रहा है, मुख देखने से उसे तृप्ति नहीं होती, देखता हुआ चला जा रहा है, जाते जाते मंदिर में पहुंच गया, लोगों ने कहा जी कैसा ही आदमी निर्लज्जित है, कोई चीज कुछ है नहीं, गुरुजनों का कोई लज्जा भी नहीं है, मंदिर में जा करके और फिर तो उसकी स्त्री बैठ गई सामने ठाकुर जी के, जी अभी पथ खुलेंगे तो मैं बीच से वहीं पर देखूंगा, एकदम निकट में बैठ गया, तो वो क्या किया उससे आगे बढ़ करके और बीच में वो ऐसे ठाकुर जी की तरफ में पथ की तरफ में पीठ दे करके खड़ा हो गया, अब रामानंद के जितने शिष्य त्यागी थे डर के मारे सब थरथरी कंप हो गई और सब जो डर के मारे कुछ बोल न सके, पट खोलने का समय हो गया किंतु सब हजारों लोगों की भीड़ हो गई दर्शन करने के लिए, किंतु वो कष्ट मत न हो उसको ये ध्यान ही नहीं है भीतर में क्या है कि नहीं है कि और वो अपनी स्त्री का मुख देख रहा है और वह कभी इसमें खड़ा है, लोगों ने जाकर के रामानंद से कहा रामानंद क्या किया, देखिए वो तो किसी के बात देखिए कहेंगे तो वो मार डालेगा, वो तो महाभयंकर दस्यु है, इसलिए आप उसको यदि समझा दें वहां हटा दिया जाए तो उसको ठाकुर जी का पद खुला ठीक है ना चलता, तो वो वहां पर पहुंचे सब लोग उत्सुकता से देखने लगे भाई क्या होता है, रामानंद वहां पर अगर सज्जन व्यक्ति आप जरा वहां से पीछे हट करके जरा साइड में खड़े हो जाए तो ठाकुर जी के पद खुलेंगे तो उनका सब लोग दर्शन करेंगे, तो कहा जो मूर्ख है इतना सुंदर मुखार में देखता है, देखो इसके तरफ में देखना चाहिए, ये इधर में पत्थर का क्या वो देखेगा, मैं उधर नहीं देखता, यदि हाँ आप ऐसा दिखला दें जो इसका भी रूप से भी अभी कोई सुंदर है तो मैं उधर देखूंगा, और नहीं कोई आप ही बड़े सौभाग्य होंगे यदि इसका रूप देखिए, रामानंद जी ने बड़ी नम्रता से कहा यदि इसे सुंदर रूप दिखला दूं तो मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा, जैसा कहें वैसा ही चलूंगा, तो आप थोड़ा सा हट सकते हैं तो इसका रूप आप भी तो देखिए और हम हमारा ये बिना देखे रहेंगे कैसे, यहाँ आप एक मिनट के लिए थोड़ा सा घर में देखिए अभी पट खुलता है तो आपको दिखा जैसे कितना सुंदर वो है, तो वो उसकी स्त्री ने कहा कि इतना क्यों झगड़ा कर रहे हो जरा हट जाएंगे आप, रामानंद के कहने पर उसने कहा तो उसके साथ ही ऐसे सरकता की नहीं सरकता उनकी बात बस हट गया थोड़ा सा, तो मैं पुजारी पहले से जरा ठाकुर जी का दरवाजा दरवाजा खुला ठाकुर जी का श्रृंगार किया गया, रंग जैसे कि वहाँ वृंदावन में रंग जी का मंदिर है जहाँ सोने का ताल रखते हैं वो असल में वहाँ पर है बस उसने छोड़ दिया, देखो दर्शन करो तो ये यही दिखला रहे थे ये पत्थर की मूर्ति, उसमें ऐसे आंख है सोने की मूर्ति बनी है और ऐसा ऐसा बस वो अपने स्त्री की तरफ में देखने लगे, रामानंद ने कहा अभी तक देखा नहीं है तो हम तो देख रहे हैं बेटा वो देख करके क्या होगा इधर देखो तुम, उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा, ये देखो तो आप जरा बजा सिर पर हाथ रखा देख सकते एकदम आंखों से आंखों की धारा कितनी और छटपट छटपट करता है ये इतना सुंदर रूप है, इतना सुंदर रूप एकदम बहुत भगवान के भक्तों के कृपा से ऐसा दर्शन हो सकता, बिना उनकी कृपा के भगवान का दर्शन ये कभी नहीं संभव होता। तो ये सबसे तो अब छोड़ दिया, किंतु स्त्री और पुरुष दोनों साथ ही रखते थे। अब ये जब स्नान करने जाते वो एकदम इनका भक्त हो गया रामानंद का, तो रामानंद जी कावेरी में स्नान करने जाते तो उसमें कम से कम नीचे उतरने में 50-60 सीढ़ियां हैं, नीचे पहाड़ी अंचल वो नीचे है, तो वो स्नान करने जाते तो ब्राह्मण जो उनके शिष्य थे उनके सिर पर हाथ रख करके कंधों पर और नीचे उतरते तो बूढ़े हो गए थे रामानंद जी, करके 90 या कुछ और वर्ष की उम्र में वो प्रकट हुए, काफी बूढ़े हुए, तो पकड़ करके जाते और स्नान करके आते तो भगवान को बुला लेते, क्योंकि ऊपर चढ़ना है ना, तो इन लोगों को लगाने तो उसके कंधे पर सिर पर हाथ रखते और वो उनको आसानी से ऊपर में ले आता। तो ब्राह्मण जितने शिष्य थे उनके अंदर में जलन पैदा हो गई, ये तो हम लोगों का अपमान है, जब स्नान करने जाते हैं तो हम लोगों को ऊपर पकड़ करके जाते हैं और जब स्नान करके आते हैं तो उस शूद्र पहलवान के ऊपर में ये रख करके अपवित्र होकर के आते हैं, फिर मंदिर में जाते हैं, इनको कौन समझाया कौन का है। रामानंद जी ताड़ गए और ताड़ने के बाद में उन्होंने कहा एक शिष्य से, जिस अभी स्नान करने जाएंगे उनकी लंगोटी चुरा लो और लंगोटी चुरा कर अदल बदल करके रख लेना, उसकी लंगोटी वहां और उसकी लंगोटी वहां पर, काफी लंबा चौड़ा हुआ।